Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena.
Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें लेकर आते हैं। और प्रमुख खबरों पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अमरीश।
और पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग।
Alright, here we go. Well, the US President Donald Trump announces 25% tariffs with a penalty on India ahead of August 1 deadline. Benchmark domestic indices end with modest gains. Sensex closes at 81,482. Nifty 50 settles above 24,850. And IMF raises India's GDP growth projection to 6.4% for both 2025 and 2026.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त की निर्धारित तिथि से पहले ही भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 81,482 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,850 अंकों के पार चला गया। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 और 2026 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया।
U.S. President Donald Trump announced today that the U.S. will impose a 25% tariff with penalty on Indian imports starting August 1. The U.S. President announced the decision on his social media platform Truth Social, wherein he described India as America's friend, but added that it will face 25% tariffs and a penalty for buying Russian military equipment and energy. He claimed that India's tariffs are among the highest in the world and that the country also has the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers compared to any other nation. He said India has always bought the majority of its military supplies from Russia and is one of the largest buyers of Russian energy along with China. The announcement follows months of talks between the two countries, but a mini or interim trade deal has remained out of reach. So that is the big story, Sushma. We were thinking that 25th August, when we were expecting officials to come from America and then come to some negotiations. Mm. But this seems like, is it a sudden jolt, 25%? And
yes, I think
is it for real? Is it for real? Or something can soften on 25th August?
Well, you know, that's difficult to say. But the fact is that the U.S. president has made this announcement. And of course, he is known for being erratic and for changing his mind. But for the time being, he has made the announcement. We have to accept it as a statement of fact that 25% and also with a penalty. Now, all this, of course, as you rightly asked me, is this surprising? Yes, I think it is surprising because the negotiations were going on and they seem to have been going well. But the fact is that, you know, as we had all anticipated, that America has been the U.S. Has been rather upset over the fact that India is not prepared to open up the dairy and the agriculture sectors.
That's right. Yeah.
But there are reasons for that. There are red lines for a reason. There's not for no reason that India has done that. We have millions and millions of subsistence farmers, and they have to compete if you're opening up the agriculture or even the dairy sector, where you have millions of small little cooperatives. you know, you have to compete with the very large farms, the large subsidies, and the corporate kind of agriculture and dairy system that you have in developed economies. So that is number one. These are the red lines, and this is the thing that had been most irking to the American trade negotiators. Coming to precisely what has been said about India by Donald Trump, first of all, I think, or rather before we go to that, I think we must put the whole thing in context. Trade between US and India is certainly very important, but actually the US is not India's largest trade partner. The largest trade partner is the European Union. With $136 billion annually, whereas both China and the U.S. are kind of number two at about $118 or $120 billion annually. So therefore, we have to see that actually our biggest market is Europe, number one. हाँ जी अम्बरीश.
लेकिन लेकिन सुषमा जी, आप ये देखिए कि 1 अगस्त की डेडलाइन थी, तो उस तरह से देखें, आज 30 तारीख है, दो दिन है, तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए थी कि अभी दो दिन की बातचीत चल रही थी, तो 1 तारीख कोई कोई अनाउंसमेंट आएगा, तो फॉर्मली बातचीत खत्म होने से पहले इस अनाउंसमेंट का क्या अर्थ है? क्या ये दबाव बनाने की एक टैक्ट है कि इसके वजह से इंडिया दबाव में आके जो भी शर्तें हैं अमरीका की वो मान ले?
ये हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप, इसको डील मेकर कहते हैं और वही ट्रांजैक्शनल चीजों में वो बिलीव करता है, तो हो सकता है कि वो प्रेशर डालने के लिए उन्होंने ये बात कही है. लेकिन जैसे मैंने कहा, ये हमें ये उनको भी और ना हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि हमारे जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं वो इन चीजों के ऊपर रिलेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए. किसानों का जो मुद्दा है, इनको हम नकार नहीं सकते.
जी, लेकिन अगर आप ये देखिए कि उन्होंने चाइना की बात भी की और भारत पर ये आरोप लगाया कि वो इक्विपमेंट्स डिफेंस के रशिया से ले रहे हैं, तो उससे कहीं ज्यादा चाइना और रशिया के रिलेशनशिप हैं. लेकिन चीन के साथ तो उन्होंने समझौता कर लिया और भारत पर पहले से ही इतना टैरिफ लगा दिया, तो ये बड़ा ही तर्कसंगत नहीं लगता कहीं से.
नहीं, अभी चीन के साथ तो खैर बातचीत चल रही है, उनके नेगोशिएशंस चल रहे हैं, अब मालूम नहीं वहां पर क्या होगा. लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है. पहली बात तो ये है, जो वो बात कर रहे हैं कि हम सोवियत रशिया से इतना डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं, वो इस मामले में ऐसी बात कर रहे हैं कि जो 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 हिस्ट्री है वो सिर्फ ट्रंप के आने से शुरू हुई है. ये एक वजह थी कि भारत ने रूस से अपना डिफेंस इक्विपमेंट लेना शुरू किया. ये इसलिए है क्योंकि और कोई देश देना नहीं चाहता था, अमेरिका देना नहीं चाहता था. ये अभी हाल ही में सिर्फ पिछले दस सालों में अमेरिका तैयार है डिफेंस इक्विपमेंट देने के लिए. उससे पहले अगर आप देखेंगे 1950s 1960s, जब हमारा देश इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो कोई देश कोई दूसरा एडवांस देश हमें ये इक्विपमेंट देने के लिए तैयार नहीं था. तो तभी ये जो मेल हुआ सोवियत यूनियन और इंडिया का, तब ये तो बहुत हिस्टोरिकल बात है, तो ये अभी की बात नहीं है. दूसरी बात, अगर आप तेल की बात देखें, तो हाँ ये बात ठीक है कि इंडिया वहां से रशिया से तेल ले रहा है, लेकिन अभी भी कोई सैंक्शंस नहीं है तेल के खरीदारी के ऊपर. जो सैंक्शंस हैं वो हैं कि आप $60 से ऊपर का तेल नहीं खरीद सकते रशिया से, और वो सैंक्शंस में इंडिया हैज कम्प्लाइड. $60 से ऊपर वो नहीं खरीद रहे. और अगर आप देखें, यूरोप में भी कई देश हैं वो अभी भी तेल ले रहे हैं पाइपलाइन से, नेचुरल गैस बहुत ज्यादा ले रहे हैं रशिया से. तो उनकी बात, ये जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन ने इसके बारे में बात की, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो इसके बारे में शायद इनको सोचना चाहिए.
द फैक्ट ऑल्सो इज सुषमा दैट नो कंट्री कैन लिव लाइक एन आइलैंड, वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट.
एब्सोल्युटली.
व्हेन इट कम्स टू यूएस, इट्स ऑल्सो अ फैक्ट दैट probably about a third of pharmaceuticals, medicines go from India. when the president makes such a statement, wouldn't that affect the American citizens and the prices of drugs can go up there? What do you say to that?
Yes, ultimately, this is what is going to happen, because what has happened right now is, there have been certain articles lately saying that, there is no impact yet on the American economy of this high tariff system. But the fact is that the high tariff system has not really impacted America, because the goods on which such tariffs are being levied have not really gone into the United States. Because what has happened is that there has been what you call front loading of exports. Many countries, including India and many other Asian countries, mm-hmm. have been trying to export a large quantity of goods before the tariff deadline comes into force. So you have on the shelves of American supermarkets things which have come in before the tariff guidelines have been implemented. Now what has to be seen is the impact will come at least 6 months later. Mm-hmm. And you will have this impact on the American economy, and you will have inflationary pressures, no doubt, which you talked about.
और चलते हैं अगली खबर की ओर. घरेलू शेयर बाजारों ने आज लगातार दूसरे दिन तेजी का क्रम जारी रखा और शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. हालांकि सूचकांक एक सीमित दायरे के अंदर ही रहे. 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 144 अंक यानी 0.18% की तेजी के साथ 81,482 अंकों पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 34 अंक यानी 0.14% बढ़कर 24,855 अंकों पर बंद हुआ. बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी तेजी का माहौल रहा. मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही सूचकांक में 0.17% की बढ़त दर्ज की गई.
Well, benchmark domestic equity indices ended with modest gains, extending their positive momentum for second straight session in a range-bound trade today. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex climbed 144 points or 0.18% to close at 81,482. The National Stock Exchange Nifty 50 advanced 34 points or 0.14% to settle at 24,855. The broader market indices at the BSE also ended marginally up. Both the mid-cap and the small-cap indices added 0.17% each.
और सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 15 में बढ़त दिखाई दी. तेजी दर्ज करने वाली कंपनियों में लार्सन एंड टूब्रो का शेयर 4.8% से अधिक बढ़ा. सन फार्मा के शेयर में 1.4% और एनटीपीसी के शेयर में 1.2% की बढ़त दर्ज की गई. गिरावट दर्ज करने वाली कंपनियों में टाटा मोटर्स का शेयर 3.4%, पावर ग्रिड का शेयर 1.4% और इटरनल का शेयर 0.9% गिरा.
इन सेक्टरल इंडेक्सेस एट द बीएसई 11 आउट ऑफ 21 सेक्टर्स शोड अपवर्ड ट्रेंड. अमंग द टॉप गेनर्स इंडस्ट्रियल्स रोज 1.3%. Tech as well as focused IT both advanced over 0.3% each, and FMCG added around 0.3%. Among the top laggards, realty slipped 1%, services declined over 0.7%, and auto fell over 0.6%. Well, we'll have more discussion on this. Let's go in for a short commercial break.
इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती. आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती. कल भी रहे आज के ठाट. ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद.
अरे नो टेंशन.
करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है.
आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें.
मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है. और चलते हैं रुपए का हाल भी जान लेते हैं. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 61 पैसे कमजोर होकर 87.42 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. और 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 98.3 9.7 पर था। सुषमा जी, शेयर बाजार का जैसा हाल आज हमने देखा कि मामूली बढ़त दिखाई दी, हालांकि रेंज बाउंड रहा, तो आप इस पूरे बाजार के मूवमेंट को जिस तरह से चल रहा है एक रेंज के अंदर, तो आप क्या एनालाइज करेंगी इसको?
जिस खबर से हमने शुरू की थी वो तो खबर आई नहीं थी दिन
जी,
में
जी।
तो ये जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी है उसी के बारे में मार्केट थोड़ी सी घबराई हुई है। थोड़ी सी अच्छी खबर, थोड़ी सी बुरी खबर बीच बीच में आती रहती है, तो वो अनसर्टेनिटी है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये यूएस फेड का अभी अनाउंसमेंट आने वाला है आज, और उसी के बारे में भी थोड़ी सी नर्वसनेस है कि फेड अभी, खैर लगता तो नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट कट करेगा, लेकिन कुछ मालूम नहीं, अभी तक तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो स्टेटस को पे ही रहेंगे, तो इसका भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो हमारी मार्केट्स दिखाई दे रही है।
लेकिन जैसा आपने कहा शुरू में कि जो अभी ट्रम्प के अनाउंसमेंट वाली खबर है वो बाद में आई,
वो बाद में आई है,
भारतीय बाजारों पर असली असर हमें कल दिखाई देगा।
बिल्कुल, कल दिखाई देगा, कल देखेंगे क्या होगा। अब रुपए के ऊपर भी क्या असर होगा वो कल दिखाई देगा, आज का तो खत्म हो गया।
और रुपए की जैसे आपने बात की, रुपया आज ही काफी कमजोर हुआ है, 61 पैसे कमजोर हुआ है एक ही दिन में, तो हो सकता है कि रुपए पर भी कल काफी एडवर्स इम्पैक्ट रहे,
काफी प्रेशर होगा रुपए के ऊपर भी।
और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। गिरावट दर्ज करने वाले बाजारों में हांगकांग शेयर बाजार का इंडेक्स 1.5%, सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% और जापान में निकेई सूचकांक 0.1% गिरा। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.7% से अधिक और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.17% की बढ़त दर्ज की गई। इस बीच बैंक ऑफ जापान की 2 दिवसीय नीति संबंधी बैठक आज शुरू हुई। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में भी दिन के कारोबार में मिला जुला रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.2% से अधिक की बढ़त चल रही थी। जर्मनी के डेक्स में 0.1% की तेजी दिखाई दी और लंदन के फुटसी में 0.3% की गिरावट दिखाई दे रही थी। सुषमा जी, आप क्या कहेंगी एशिया के बाजारों का जिस तरह से आज मिला जुला रुख रहा? हालांकि इधर दूसरी खबर की बैंक ऑफ जापान की जो नीति संबंधी बैठक आज शुरू हुई है, कल तक उसमें क्या फैसला होता है उसके बाद हमें उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। आप एशिया के बाजारों के मूवमेंट को कैसे एनालाइज करते?
मेरे ख्याल में एशिया में भी वही बात नजर आ रही है कि जो टैरिफ का जो असर है, टैरिफ जैसे मैंने कहा यूएस और चीन के बीच में जो बातचीत चल रही है उसका नतीजा लोग इंतजार कर रहे हैं। खैर एक दो देशों के बारे में उनकी अग्रीमेंट्स तो हो गई हैं, वियतनाम और इंडोनेशिया, लेकिन बहुत सारे देशों के साथ नहीं हुई हैं, तो ये थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी है वो दिखाई दे रही है एशियन मार्केट्स में। और बाकी जैसे मैंने कहा इन मार्केट्स में भी वही है कि यूएस फेड का इंतजार है, क्योंकि उसका जो असर है वो सिर्फ अमेरिका में नहीं है, वो पूरे दुनिया भर में होता है।
Right, moving on to the US-China talks. Top US and Chinese officials wrapped up 2 days of talks in Stockholm, describing them as constructive and agreeing to try to extend their current 90-day tariff truce, which is set to expire on August the 12th. China's trade negotiator Li Qingyang said both sides want to preserve the truce which paused escalating tariffs earlier this year. However, US Treasury Secretary Scott Bessent said that the final decision rests with President Trump. Speaking to media, Trump said he was briefed on the talks and would get more details soon. Despite progress, he later raised tariffs again after returning to Washington. This is a very interesting development happening between US and China, Sushma. China seems to have an edge because it is processing probably 90% of rare earth metals.
Yes.
What was happening with oil a few decades ago, now we say it's the rare metals. Whichever country has rare metals, you know, that country has the dabdaba or the, has a, is in a dominating position. So, and US has signed a deal with EU, has signed a deal with Japan. Japan has received lowest tariffs on chips and pharma. In the light of all this, how do you analyze the US-China talks? Where do they seem to be going?
Well, the US-China talks are obviously going to be very tough, because the Chinese negotiators are also going to, I mean, just like India has its red lines, China also has its red lines. And China, of course, as you rightly pointed out, has, things on which they can retaliate against the U.S., which is rare earths. And apart from that, there are large number of items which they have, which they export to the U.S. Now, in terms of chips, for instance. So the U.S. has already relented in one sense, that they have allowed export of chips, high quality, high tech chips, which they had stopped from export to the to China. They have now allowed Nvidia to export to them. In return for that, China has agreed to, release the supply of rare earth magnets. So there is some, quid pro quo happening over there. At the same time, the trade between the two countries is extremely large. And therefore, the talks are not going to take place in a hurry, just as it is for India. India, the trade levels are much smaller. So therefore, you can imagine for China, the number of commodities, there are large number of agriculture commodities which the U.S. is exporting to China. And in fact, they are now thinking that's why they want to export them to India. They think, China is no longer going to be a market for soybean and maize. Yes. And they're looking to...
And corn.
Yes, and corn some maize. Mm-hmm. So therefore, they are looking at India as a market. And so these, everything, as you rightly pointed out at the beginning, everything is interlinked.
Yeah, that's right. Also, one wonders that how would it affect the global economy if US-China, the way they are going, would US soften on China?
Well, they will soften in certain areas because, as you yourself pointed out, they have certain retaliatory measures they can take. So, but really, it depends on what happens in the talks.
जी और चलते हैं कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक
इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती कल भी रहे आज के थाट ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद
अरे नो टेंशन
करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है
आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें
All right, welcome back, friends. Let's move on. Well, U.S. stocks closed lower on Tuesday as the S&P 500 and Nasdaq retreated from record highs after some disappointing corporate earnings. The Dow Jones Industrial Average dropped over 0.4%. Nasdaq Composite Index declined almost 0.4%. And S&P 500 ended 0.3% down, snapping a six-day rally. Meanwhile, investors are awaiting the Fed Reserve policy decision announcement later tonight. Fed Chair Jerome Powell's remark will be closely monitored to gauge the timing of any potential rate cuts. Which way do you think? We just talked about it, Sushma. Which way do you think the Fed would go?
Well, it looks as if they're going to maintain status quo. But of course, you may have watched the interaction between the Fed Chair and Donald Trump while, Trump was taking a tour of the renovations in the Federal Reserve building. And how he charged Jerome Powell with having expanded their costs, escalated costs, and Jerome Powell denied it. So that was a very interesting interaction, an open public tiff. Yes. Between the head of the Federal Reserve and the president. So clearly they're not on good terms. I doubt if Jerome Powell is going to oblige Mr. Trump by reducing interest rates.
But President Trump also said that I'm not going to remove him from his post.
चलते हैं अगली खबर की ओर. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आर्थिक वृद्धि अनुमानों में संशोधन किया है तथा वर्ष 2025 और 26 के लिए 6.4% वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया है. पहले वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.2% और वर्ष 2026 में 6.3% रहने की आशा व्यक्त की गई थी. प्रस्तुत है इस बारे में एक रिपोर्ट।
विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करते हुए मुद्रा कोष ने अनुमानों में संशोधन की वजह अनुकूल बाहरी परिस्थितियों को बताया। वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2025 में 3% और 2026 में 3.1% रहने का अनुमान है। पूर्व अनुमानों से ये मामूली वृद्धि अमरीकी शुल्कों के आशा से कम असर और वित्तीय स्थितियों में सुधार के कारण होगी। चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2025 में 4.8% और 2026 में 4.2% रहने की उम्मीद है, जबकि अमरीका की वृद्धि दर 2025 में 1.9% और 2026 में 2% रहने का अनुमान है। प्राची प्रिया, मार्केट मंत्रा।
मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं आयकर विभाग से जुड़ी खबर की ओर। आयकर विभाग ने आयकर विधेयक 2025 में कर दरों में किसी बदलाव से इनकार किया है। आयकर विभाग ने प्रस्तावित विधेयक पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल बनाना और अनावश्यक और पुराने प्रावधानों को हटाना है। मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि नया विधेयक कुछ श्रेणी के दाताओं के लिए दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ कर दरों में बदलाव करेगा। स्पष्टीकरण में आयकर विभाग ने कहा कि नया विधेयक वर्तमान कर संरचना में कोई बदलाव किए बिना कर नियमों को आसान, प्रौद्योगिकी अनुकूल और मौजूदा प्रावधानों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से है। सुषमा जी, आप क्या कहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आयकर लगभग सभी के रुचि का विषय है कि किस तरह के नियम होंगे और क्या उसे किस तरह की राहत मिलेगी। और चूंकि जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग है उसका अगर सरलीकरण होता है तो सभी को उसका लाभ मिलेगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
मेरे ख्याल में काफी सालों से ये जो आयकर विभाग है वो धीरे धीरे करके सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल इनको थोड़ी और तेजी से करना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये नया जो बिल है इसमें और भी सिंप्लीफिकेशन की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पहले तो ये था कि लोग हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाते थे, भाई हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब वो खुद कर सकते हैं और डिजिटली भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है
जी।
Right, and well, crude oil prices fell today. Brent crude was trading over 0.2% down at $72.34 per barrel, and WTI crude was also trading 0.2% down at $69.08 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 0.5% up at 99,340 rupees per 10 grams, and silver was trading 0.3% down at 1,13,770 rupees per kilogram a short while ago.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.58% बढ़कर 98,830 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.26% गिरकर 1,13,460 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति को। सुषमा जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद।
Now the headlines: US President Donald Trump announces 25% tariffs with a penalty on India ahead of August 1 deadline. Benchmark domestic indices end with modest gains. Sensex closes at 81,482. Nifty 50 settles above 24,850. And IMF raises India's GDP growth projection to 6.4% for both 2025 and 2026. And that's all we have for you in this edition of Market Mantra. Market Mantra.